समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटाया। राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70% किया। इससे पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों से 140 करोड़ भारतीयों को राहत।
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman dismisses lockdown rumors, calls reports baseless.
केंद्र ने आश्वस्त किया, देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। कहा, पिछले एक दशक में घरेलू यूरिया उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हुआ।
Prime Minister Narendra Modi to interact with chief ministers on West Asia conflict to review states' preparedness and plans this evening.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई।
एंड बालेंद्र शाह टेक्स ओथ एज नेपाल्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Theatre Day. Well, Akarshita, today is March 27th, and across continents, languages and cultures, something extraordinary has been celebrated, World Theatre Day, a day dedicated not just to performances, but to the spirit of theatre, a spirit that connects humanity through stories, emotions and shared experiences. So let's begin a journey by talking about the birth of the World Theatre Day. Well, World Theatre Day was initiated in 1962 by the International Theatre Institute, also known as ITI. And since then, it has been celebrated every year by theatre communities across the globe. But how did it all begin? Well, it was Arvi Kivima, the president of Finland, who suggested dedicating a special day to theatre. And the proposal was met with enthusiastic support, especially from Scandinavian countries. And soon the world embraced it. And Akarshita, one of the most cherished traditions of this day is the international message. Every year, a globally respected artist is invited to share their thoughts on theatre and its role in promoting peace and cultural unity. And the very first message back in 1962 was written by the legendary French artist Jean Cocteau. And theatre from the very beginning has just entertained, it has not just entertained, it has reflected society, challenged norms and inspired change.
बाबूमोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर आप, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंदी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।
तो श्रोताओं, ये थी बहुत फेमस डायलॉग राजेश खन्ना जी की। और थिएटर सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का एक आईना बन गया है जो हमारी भावनाओं, संघर्षों, रिश्तों और सच्चाइयों को दिखाता है। ये अभिव्यक्ति संस्कृति और जुड़ाव के बारे में है। फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से पहले थिएटर की कहानियों को जीवंत करता था ये, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर परफॉर्मेंस लाइव होती है, कोई रीटेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बस कच्ची प्रतिभा और उसी पल का जादू, क्योंकि थिएटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग लाइक इन अ मूवी. अभिषेक, और अगर हम बात करें रंगमंच की, तो अगर हम हजारों सालों पीछे की बात करें तो भारतीय रंगमंच दुनिया की सबसे पुरानी रंगमंच परंपराओं में से एक है, जिसकी जड़ें लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैली हुई हैं. उन शुरुआती दिनों में रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत पवित्र कार्य था. प्रदर्शन वैदिक अनुष्ठानों का हिस्सा होते थे, विशेष रूप से यज्ञों के दौरान, जहां दैवीय आशीर्वाद पाने के लिए कहानियों का मंचन किया जाता था. ये प्रदर्शन गहरे प्रतीकात्मक होते थे, जिनमें कहानी कहने की कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल होता था. भारतीय रंगमंच की नींव एक विशाल ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर टिकी है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था. इस प्राचीन ग्रंथ को अक्सर पांचवा वेद कहा जाता है. इसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, मंच, सज्जा और दर्शकों के साथ जुड़ाव के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. और अक्सर हम देखते हैं, जब भी रामायण जो है हम देखने जाते हैं, रामलीला मैदानों में देखने जाते हैं, तो किस तरीके से वो एक कहानी के जरिए, एक नाटक के जरिए, वो पूरी कहानी हमारे सामने सजीव जो है प्रस्तुत कर
देते हैं. And here I'm reminded about that famous saying. Someone very famously said that all life is a stage, and man here are just merely players. You know, we are all just playing a role in this life, which is a stage by itself.
William Shakespeare
said that, isn't it? So it's we are all players here. And one of the most important contributions is the concept of rasa, the emotional essence of a performance. And according to this theory, theater exists to evoke feelings like love, anger, joy, sorrow, and wonder in the audience. And imagine, over 2,000 years ago, artists were already mastering the psychology of storytelling.
लोगों में सहानुभूति जगाने में थिएटर की अहम भूमिका होती है. जब दर्शक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो वे किरदारों से सीधे जुड़ जाते हैं, उनकी मुश्किलों, खुशियों और आपसी टकरावों से. ये भावनात्मक जुड़ाव लोगों को असल जिंदगी की स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है. अब बॉलीवुड की ही बात करें तो क्या आप जानते हैं कि थिएटर ही भारतीय सिनेमा की रीढ़ रहा है? कई दिग्गज अभिनेताओं ने फिल्मों में आने से पहले मंच पर अपने ही करियर की शुरुआत की थी. अभी बहुत ढेर सारे ऐसे फेमस एक्टर्स हैं अभिषेक, जो है थिएटर से आए हैं. पंकज त्रिपाठी को देख लीजिए, काफी फेमस हैं, वो भी थिएटर से ही गए हैं. और अगर हम पीछे चले, पुरानी बात करें, तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय रंगमंच अपने स्वर्ण युग शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच में प्रवेश कर गया था. तो इस काल ने हमें इतिहास के कुछ महानतम नाटककार दिए हैं, जिनमें भास, कालिदास, शूद्र, विशाख दत्त, भवभूति और हर्ष शामिल हैं. ये इतने बड़े बड़े जो है नाटककार थे अभिषेक, कि इन्होंने इतने सालों पहले, इतने वर्षों पहले ही नाटक की रचना की थी, जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं.
Absolutely.
और जिन्हें, जिनसे हम आज भी सीखते हैं उनके नाटकों
में. Forget the greatest playwright of all, William Shakespeare.
जी जी बिल्कुल. तो उनके नाटकों में प्रेम, कर्तव्य, राजनीति और नैतिकता जैसे विषयों को दर्शाया गया, और अक्सर कविता और नाटक का सबसे मनमोहक मिश्रण प्रस्तुत करते हुए दर्शाया गया. विशेष रूप से कालिदास की रचनाएं आज भी अपनी सुंदरता और गहराई के लिए सराही जाती हैं. उनकी मेघदूतम रचना आप देखिए, या बहुत ढेर सारी मालविकाग्नि मित्रम है, बहुत ढेर सारी ऐसी रचनाएं कालिदास की. हालांकि ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहा. विदेशी आक्रमणों और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के साथ संस्कृत रंगमंच का पतन शुरू हो गया था. कई वर्षों में ये दब भी गया था, लेकिन एक ऐसी लौ की तरह जो बुझने से इनकार कर देती है, इसका सार जीवित रहा, विशेष रूप से दक्षिण भारत में कुडियाट्टम के माध्यम से, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित रंगमंच परंपराओं में से एक है.
Yes, now let us talk about the rise of folk theater traditions, Akarshita. Now, as classical theater declined, something remarkable happened. Theater became local, it became people's art. And across India, vibrant folk theater traditions emerged, each reflecting the culture, language and life of its region. Jatra in Bengal and Orissa, Bhavai in Gujarat, Nautanki in Uttar Pradesh, Tamasha in Maharashtra, Ankiya Nat in Assam, Yakshagana in Karnataka. Now, these forms were energetic, musical, and deeply engaging. They were performed in open spaces, often during festivals, and were accessible to everyone and not just the elite. Theatre had truly become the voice of the people.
और अब हम बात करेंगे औपनिवेशिक प्रभाव और बदलाव की कि जब अंग्रेज आए हमारे देश में तो उस पे थिएटर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा. तो 17वीं सदी एक नया अध्याय लेकर आई, अंग्रेजों का आगमन, उनके साथ ही पश्चिमी थिएटर की परंपराएं भी आई, खासकर प्रोसिनियम स्टेज जिसने व्यवस्थित प्रस्तुतियों, भव्य सेटों और यथार्थवादी वेशभूषा की शुरुआत भी की. कलकत्ता और बंबई जैसे शहर सांस्कृतिक केंद्र बन गए जहां थिएटर नए रूपों में फला फूला. भारतीय कलाकारों ने शेक्सपियर, ब्रेक्ट और लीसिंग की रचनाओं को अपनाना शुरू किया और पश्चिमी तकनीकों को भारतीय कहानी कहने के अंदाज के साथ उसको मिला दिया. इस दौर में पारसी थिएटर का भी उदय हुआ, एक भव्य संगीतमय और बेहद नाटकीय शैली जिसने पूरे देश के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, संगीतमय नाटक. अन्ना साहेब के लोस्कर द्वारा शुरू की गई इस शैली में संवादों को गीतों के साथ जोड़ा गया जिससे एक समृद्ध और डूब जाने वाला अनुभव तैयार हुआ. इस युग को गांधर्व काल के नाम से भी जाना जाने लगा जो संगीत में थिएटर के लिए एक सुनहरा काल था.
Yes, and talking about the literary drama and cultural fusion, as the audiences evolved, so did theater. The demand for more nuanced storytelling led to the rise of literary drama. At the forefront of this movement was Rabindranath Tagore, a literary genius who redefined Indian theatre, and his plays beautifully blended Eastern philosophy with Western narrative styles. And one of his most famous works, Chitrangada, gained international acclaim, showing the world the depth and elegance of Indian storytelling.
और अभिषेक, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो पहली फिल्म आई थी, मूक फिल्म, वो थी राजा हरिश्चंद्र, और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उसी पे दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही उसको बनाया था. और उसके बाद पहली बोलती फिल्म आई थी आलमारा. तो 1930 के दशक में एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी सामने आया सिनेमा. हिंदी फिल्मों में टॉकीज मतलब बोलती फिल्मों के आने के साथ ही दर्शक फिल्मों की ओर मुड़ने लगे, रंगमंच थिएटर का पतन होने लगा. लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसके बजाय उसने खुद को नए हालात के हिसाब से अपने को ढाल लिया.
Yes, and theater also was used as a tool for change. And in the 1940s and 50s, theater re-emerged with a new purpose, social and political awareness. The Indian People's Theatre Association, IPTA, founded in 1943, played a crucial role in this transformation. Theatre became a medium to address issues like inequality, injustice and freedom. In regions like Bengal and Kerala, theatre became deeply political. Playwrights like Utpal Dutt created powerful Marxist-inspired plays such as Kalol, Manushir Odhikar, Tineer Talwar, and these works challenged authority and sparked dialogue.
लेकिन इन सब के बीच 1960 का दशक एक पुनर्जागरण का दौर था. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक के तौर पर इब्राहिम अलकाजी ने थिएटर शिक्षा में एक क्रांति ला दी. उन्होंने अनुशासन, व्याख्या और प्रासंगिकता पर बल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि थिएटर समकालीन दर्शकों से जुड़ाव महसूस कराए. इसी समय क्षेत्रीय थिएटर पूरे भारत में आपस में जुड़ने लगे. विजय तेंदुलकर और मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने क्षेत्रीय जड़ों से जुड़ी सशक्त कहानियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. विजय मेहता जैसे निर्देशकों ने मानवीय रिश्तों की भावनात्मक गहराई को खंगाला और ऐसी प्रस्तुतियां तैयार की जो एक ही समय में अत्यंत निजी और सार्वभौमिक भी थी. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं की स्थापना करके एक अहम भूमिका निभाई. उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि थिएटर और अन्य कलाओं का संरक्षण और संवर्धन हो सके.
Yes, innovation and survival too. And even as the television began to dominate entertainment, theater found new ways to survive. And one of the most innovative approaches came from Badal Sarkar, who introduced third theater. And this form rejected expensive sets and auditoriums. It was simple, flexible, and performed in open spaces. His belief was powerful. Theatre does not need luxury, it needs people. And he proved it right. His performances thrived, supported even by the poorest communities.
जी हाँ, पवित्र अनुष्ठानों से लेकर शाही दरबारों तक, हलचल भरी सड़कों तक, आधुनिक प्रायोगिक मंचों तक, भारतीय रंगमंच ने 3000 वर्षों से भी अधिक का सफर तय किया. ये विकसित हुआ और इसने खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है और बार बार अपना नया रूप गढ़ा है और आज भी रंगमंच हर जगह मौजूद है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो मंडी हाउस पे ही देखिए ढेर सारे जो है थिएटर ग्रुप हैं और बहुत ढेर सारे ऐसे थिएटर्स हैं जैसे कि बहुत ढेर सारे हैं मंडी हाउस में ही जहां पे लोग आज भी जाते हैं, जो थिएटर के प्रेमी हैं वो जाके नाटक देखते हैं और उसका सजीव लाइव एक तरीके से प्रसारण देखते हैं क्योंकि उनको वो फिल्म समझ नहीं आती जो रिकॉर्डेड होती है। तो कहीं ना कहीं थिएटर आज भी हमारे बीच है, लोगों की पसंद बना हुआ है और शायद ये वर्षों तक रहेगा।
एब्सोल्युटली। एंड सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन द वर्ल्ड थिएटर डे ऑन दिस आकर्षिता ऑन दिस वर्ल्ड थिएटर डे लेट अस सेलिब्रेट नॉट जस्ट एन आर्ट फॉर्म बट अ लिविंग ब्रीदिंग ट्रेडिशन। Theatre is where stories come alive. It is where society sees itself. It is where voices are heard, truths are spoken, and emotions are shared. And as long as there are stories to tell, and as long as there are people to listen, theatre will live on.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And we start off with a story from Goa. On this World Theatre Day, a powerful theatre production in Goa is reviving a traditional folk form while raising concerns about rapid urbanization. Sindha Borchi Kani blends heritage with contemporary realities. We have a report.
In Goa, a unique theatrical effort is bringing back the essence of Perni Zagar, one of India's oldest theatre forms. Sindha Borchi Kani, presented by Abhivyakti Panji, is structured on elements inspired by this rich folk tradition.
Sindha Borchi Kani, the play in Konkani, which has been researched and written by eminent Goan folklorist and Padma Shri awardee Shri Vinayak Khedekar. The play has been designed and directed by me, Dr. Sagir Deshpande, and it reflects on the rapid pace of urbanization and how it is reshaping communities and traditional ways of life. The production combines the age-old storytelling with modern times. And we have also incorporated the elements of the oldest theater form of Goa, the Perni Zagar. Actually, underlining the folk traditions are not relics. I believe that they are living expressions of the society. Hence, it also aims to generate interest among younger generation by offering hands-on exposure to this rare theater form.
Supported by the Suna Paranta Goa Center for the Arts, the initiative highlights the need to actively revive and reimagine Goa's cultural heritage for the future. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार पश्चिम बंगाल के 46 उत्पाद जिनमें पारंपरिक भोजन से लेकर हस्तशिल्प तक शामिल हैं, फिलहाल भौगोलिक संकेत यानी GI का दर्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
As many as 46 products from West Bengal, ranging from traditional foods to handicrafts, are currently awaiting geographical indication GI status, according to a reply by the center in the Lok Sabha. The applications are pending with the geographical indications registry at different stages, including pre-examination, examination and publication. Of these, 24 products have been published in the GI journal, placing them closer to registration. These include clay doll of Krishnanagar, Notungram, Wooden Doll, Shantiniketan Batik, Lack of Purulia, Begampur Cotton Handloom Sari, Fulia Jamdani Saris, Kochvihar Sitalpati, Shantiniketan Ektara, Chandannagar Jalvara Sandesh and Jonai Monohara. Other items in the list are Bengali Singing Bowl, Ashapur Brinjal, Makura Conch Shell Craft, Beliator Mecha Sandesh, Bishnupur Dashavata Tash, Kanakchur Rice, Sholapit Craft, Khagra Brass and Bell Metal Utensils Bankura Brass, Bangla Nolengur, Murshidabad Silk and Bolagor Boat. Several others remain under examination. A larger group is at the pre-examination stage. The GI registration process involves multiple stages including scrutiny, examination, publication and an opposition window. Officials believe that the progress of these applications reflects a growing push to secure recognition for Bengal's rich culture and artisanal heritage. Sushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
वंदे भारत ट्रेन का दूसरा रेक नियमित रखरखाव के लिए त्रिची के गोल्डन रॉक पोन मलाई रेलवे वर्कशॉप भेजा जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
In a significant step towards ensuring safety and peak performance, the sleek and modern Vande Bharat Express connecting Madurai and Bengaluru is gearing up for its scheduled maintenance. This move highlights the continuous efforts of Indian Railways to maintain world-class standards in its semi-high-speed fleet. More than a year after it was introduced from Madurai to Bengaluru via Trichy, the Vande Bharat Express train will soon be sent to Trichy for periodic maintenance. The second rake of Madurai-Bengaluru Vande Bharat Express is set to be dispatched to the Trichy workshop for its periodic maintenance. The Golden Rock Railway workshop at Purmalai in Trichy, with a legacy of over 90 years, has been entrusted by Southern Railway with the responsibility of carrying out this maintenance work. One rake consisting of 16 coaches will undergo shop schedule 1 maintenance, a routine process conducted once every 18 months. During this maintenance, the train's modern air-conditioned coaches will be thoroughly examined. Critical components such as bogies will be overhauled and braking systems will undergo detailed inspection. Any defects identified both within the coaches and on the exterior will be promptly rectified to ensure continued safety and efficiency. A dedicated technical team will undertake the maintenance work within the extensive workshop premises, which is equipped to handle a wide range of activities including the overhaul of passenger coaches, locomotives and wagon manufacturing. Officials have indicated that the rake is expected to be sent to workshop by the end of this month and the maintenance is planned to be completed within a month, after which the train will resume its regular operations. The Madurai-Bengaluru Vande Bharat Express operates as a daytime service via Trichy, Karur, Namakkal and Salem. This will be the second instance of Vande Bharat coaches being maintained at the Trichy workshop. Earlier, the first rake operating on Chennai-Mysuru route underwent SS2 maintenance, which is typically carried out once every 3 years. Widely regarded as a symbol of modern railway travel in India, the Vande Bharat Express has emerged as a preferred choice for passengers, offering a seamless blend of speed, comfort and advanced technology and setting new benchmarks in the country's railway network. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani, Tiruchirappalli.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल अभिषेक से.
In South Asian Football Federation SAF Under-20 Championship, defending champion India began the campaign with a commanding 3-0 win over Pakistan at the National Football Stadium in Malé in the Maldives yesterday. The win helped India move into the semi-finals of the championship while knocking out rivals Pakistan, and India will now take on Bangladesh in the semi-finals tomorrow. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices plunged more than 2% today, weighed down by broad-based sell-off across sectors and weak global cues. The Sensex tumbled 1,690 points or 2.25% to close at 73,583, while the Nifty shed 487 points or 2.1% to settle at 22,280. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Jogendra Chandra Chakrabarti, alias Hirendra Jeevan Ghosh, a resident of Maimonsingh, now in Bangladesh. Chakrabarti was a member of the Dhaka Anushilan Samiti. He was involved in the Sonarang postal peon assault and theft case, for which he was sentenced to 8 months rigorous imprisonment.
In 1913, Jogendra Chandra took part in the plan to kill Gordon, sub-divisional officer of Silhet. Unfortunately, the bomb he was carrying to Gordon's bungalow to execute the plan on the 27th of March 1913 exploded in his own hands and killed him. We pay tributes to the great martyr.
We also remember social reformer Sir Syed Ahmed Khan, who died on the 27th of March 1898. Sir Syed was one of the greatest social reformers and a great national builder of modern India.
He instituted Scientific Society in 1863 to instill a scientific temperament into the Muslims and to make the Western knowledge available to Indians in their own language.
In 1875, Sir Syed founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh, now Aligarh Muslim University, and patterned the MAO College after Oxford and Cambridge universities. He wanted his college to act as a bridge between the old and the new, the East and the West.
The Aligarh movement helped infuse social and political sensibility into people across the nation.
Sir Sayyid contributed many essential elements to the development of the modern society of the subcontinent. We salute the great reformer.
आज पुण्यतिथि है विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की। वे 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को तत्कालीन सोवियत संघ में हुआ था। इन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद यूरी गागरिन अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन चुके थे। यूरी गागरिन को कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया था। उन खिताबों में से एक खिताब था हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। इन्होंने वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी 1968 में, जब वे मिग 15 नामक प्रशिक्षण विमान का संचालन कर रहे थे तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
Quentin Jerome Tarantino was born on this day 1963. He is an American filmmaker, actor and author. His films are characterized by graphic violence, extended dialogue and references to popular culture. His work has earned a cult following alongside critical and commercial success, and he has been named by some of the most as one of the most influential directors of his generation, and has received numerous awards and nominations, including 2 Academy Awards, 2 BAFTA Awards and 4 Golden Globe Awards.
आज पुण्यतिथि है भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश की।
जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं।
प्रिया राजवंश ने निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की कई फिल्मों में अभिनय किया। प्रिया राजवंश का जन्म 1937 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम वीरा सुंदर सिंह था। प्रिया ने लंदन में फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट्स में एडमिशन लिया। उन्होंने 1974 में दर्शकों फिर से सुन लीजिए माफ करिए उन्होंने 1964 में फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं हकीकत, ही रांझा, हस्ते जख्म आदि। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का और एक गीत।
मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम।
Yes, and Maria Carey was born on this day 1969. She is an American singer, songwriter, record producer and actress dubbed the Songbird Supreme. Curry is known for a 5-octave vocal range, melismatic singing style, signature use of the whistle register and diva persona. An influential figure in popular culture, she was ranked as the 5th greatest singer of all time by Rolling Stones in 2023. Let's listen in to a hit track of hers.
I don't want a lot for Christmas.
आज पुण्यतिथि है आगा जानी कश्मीरी की, जो शुरुआती हिंदी सिनेमा के प्रमुख पटकथा लेखक, संवाद लेखक और अभिनेता थे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज से अपने करियर की शुरुआत की। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 1930 के दशक में कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन लेखक के रूप में उनकी पहली बड़ी फिल्म वचन थी। वे अपनी शानदार संवाद लेखन शैली के लिए जाने जाते थे, विशेषकर 1943 की ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत के लिए, जिसने भारतीय सिनेमा में नायक की एक नई परिभाषा गढ़ दी।
Yes, and Stacey Ann Fargie Ferguson was born on this day in 1975. She's an American singer, songwriter, actress, and businesswoman. Let's listen in to a hit track of hers.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Yes, and Koni Dela Ramcharan was born on this day in 1985. He is an actor, film producer and entrepreneur who primarily works in Telugu films. He is one of the highest paid actors in Telugu cinema and is also known for his dancing. And he has featured in Forbes India's Celebrity 100 list since 2013. Charan is a recipient of several awards, including 4 Filmfare Awards and 2 Nandi Awards.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।